फिर अब देखिए, जब तकवा होगा ना, तो एक और चीज़ जो बहुत ही क्रिटिकल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुमान के मुताबिक आप में से किसी के रिस्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन जिक्र करना मेरा फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस पेट में हराम के टुकड़े हों, अल्लाह उसकी नमाज रोज़ा कबूल नहीं करता। एक शख्स है, घोड़े पे सवार होके मट्टी से लदा पदा, यानी सफ़र की सारी मुश्किलें सहता है, फिर हरम में पहुंचता है, फिर वहाँ काबे के गिलाफ को पकड़ता है और फिर अल्लाह से को पुकारता है। यह हदीस का खुलासा बता रही हूँ, कोट कर रही हूँ सिर्फ एक उसका मफहूम, सही रिवायत है। और ऊपर से आवाज़ आता है कि ना तेरी इबादत कबूल, तेरा कुछ भी नहीं कबूल। क्यों? क्योंकि तेरा खाना हराम का, तेरा लिबास हराम का। तो जब पेट में हराम के लुकमे हों, आंखें हराम चीज़ें देखें, कानों में हराम की आमेजिश हो, तो हदीस में एंड पे बड़ा प्यारा अंदाज है कि कैसे अल्लाह उस बंदे की कबूल करे। तो हम सब को अपने मर्दों, अपने भाइयों, अपने बेटों, जिसके ज़रिए से घर में सोर्स ऑफ इनकम है, घर में मनी आ रही है, इवन खुद भी, झूठ बोल के माल नहीं लेना, वो हराम है। रिश्वत का माल हराम है, सूद का माल हराम है। जहाँ भी इसको आप फील करेंगे, आज क्यों इतने मसाइल, इतनी बीमारियाँ, औलादें दूर, मियाँ बीवी में झगड़े, कभी आपने इतना ज़्यादा सोशल अपसेटनेस नहीं देखी होगी कभी मुसलमानों में, ये जो पिछले 20-25 सालों में आ गई। घरों का सुकून टूट गया, वजह क्या है? हम एक अल्लाह की हद तोड़ते हैं, कोई रिश्ता हमारी हद तोड़ेगा। हम अल्लाह की नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारी नहीं मानेंगे। वो कहा कि तुम मत सोचो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं सुनते हैं, डोंट वरी, वो तुम्हारी नहीं भी सुनते, लेकिन वो तुम्हें देखते ज़रूर है। जो तुम करोगे वो करेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ है, उसको दिल से निकालना है। फिर तीसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा छुपी हुई है, नज़र ही नहीं आती, और सही हदीस से पता चलता है कि जिस शख्स के दिल में कीना होता है, एनिमिटी, बुग़स जिसको उर्दू में कहते हैं, अल्लाह उसकी इबादत भी कबूल नहीं करता। जो अपने किसी मुसलमान भाई बहन से 3 दिन से ज़ायद ना बोले, तर्क कलामी करे, और वजह सिर्फ जाती है। और आज हमारी वजूहत क्या है? जायदादें, ज़मीनों एक टुकड़े भाई खा गए, रिश्ते बहनों ने तोड़ दिए, और चचा भतीजों का माल खा गए। आज सच बताइए, जितना माल ज़्यादा, जितनी हमारे पास दुनिया की नेमतें ज़्यादा है, क्या खून के रिश्तों में वो मोहब्बत और चाशनी है जो पहले थी? सच बताइए, पहले आप कभी, आज से मेरे हाले 15 साल पहले भी, 20 साल पीछे भी चले जाइए, आप अपने मुल्क में जाने का सोचते थे तो किस सोच के साथ जाते थे? सब खुश हैं, वो बुला रहा है, वो कह रहा है, उसका, अब कोई बुलाता है आपको? आपको कोई बुलाता भी है तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, और कोई ना बुलाए, हर बंदा अपने मसलों में उलझा पड़ा है। आज वो दिलों में मोहब्बत नहीं रही जो पहले थी, वजह क्या है? मादा परस्ती। कल किसी सिस्टर के साथ थी, तो वो रिसेंटली पाकिस्तान से होके आई थी, तो वैसे ही अपनी कुछ बातें करते हुए एक बात कहने लगी कि आप तो वो मिठास नहीं लगती, किसी रिश्तेदार को देते रहो तो वो आपकी खातिर भी करेगा, इज्जत भी करेगा। अभी उनका तजुर्बा हो सकता है, हमारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप देखिए कि दिलों को साफ़ करें। घर साफ़ करेंगे ना रमज़ान से पहले, ताकि घर उजला रहे, तो दिल भी साफ़ रखे। यहाँ बैठे बैठे कहिए, मैंने सबको माफ़ किया, जिसने मुझे सताया, जिसने मुझे रुलाया, जिसने मुझे दुख दिए, मैंने उसको दिल की गहराई से माफ़ कर दिया। उस पे तो एहसान आपने किया, आपने अपने ऊपर भी किया, क्योंकि जब हम किसी के लिए दिल में सोचते हैं बुरा, तो हम ही जलते हैं ना। वो कहते हैं ना कि गुस्सा क्या है, दूसरे की गलती की सज़ा खुद को देना। तो हम अपने आप को इस गलती से बचाएंगे इंशाल्लाह ताला, हर मुमकिन हद पर। और ये याद रखिए कि कोई मुझे कुछ नहीं दे सकता। इस पे एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी बात है, एक उस्ताद शागिर्द का मुकालमा आपको सुनाती हूँ, जिससे इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी कि इल्म और अमल दोनों किस तरह का होना चाहिए। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे, आलिम थे, उनका नाम है शफीक बलखी, बलख से रहते थे, नाम था, नामों से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका एक शागिर्द था, उसका नाम था हातिम। एक दिन उसको कहने लगे कि हातिम, तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो, यानी ये ओल्ड स्टूडेंट था जिसको आप कह लें। चलिए आप सोचिए ज़रा, कितने साल से वो साथ होगा? हाँ जी, 5-6 साल। ये 5-6 साल पे जम गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 5-6 साल बहुत बड़ी मुद्दत है ना, बचपन से। अच्छा जी, और हम तो 1-1.5 साल का कोर्स करके क्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया, हम सीख चुके हैं ना। हातिम कहने लगे कि मैं आपके पास 32 साल से हूँ, अल्लाह हमें भी इतना सब्र दे। आप देखिए कि दरख्त से फल लगा रहता है तो मीठा होता है, जो उस्ताद की कस्टडी में रहते हैं वो मीठे पकते हैं, और जो खुद अपना सर उठाकर इधर उधर के तजर्बे करते हैं वो फिर कुछ साल बड़ा ऊपर जाते हैं, फिर एकदम गिरते हैं, क्योंकि वो गाड़ी चलानी सीख ही समझा सब आ गया, रोड पे डाली अब संभल नहीं रही, इतने फितने पड़े कि वो फिर जान छुड़ा कर भागे। तो खैर कहने लगे कि मैं तो आपके साथ 32 साल से हूँ। कहने के अच्छा, इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? तो शागिर्द कहने लगा कि मैंने आपसे बस 8 बातें सीखी हैं। तो उस्ताद को तो गुस्सा आ गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस्ताद को बड़ा बुरा लगा कि सिर्फ 8 बातें सीखी है, इसका मतलब मैंने तो तेरे ऊपर अपना वक्त ही ज़ाया कर दिया, यानी बड़ा नालायक शागिर्द है तू कि तूने इतने सालों में सिर्फ 8 बातें सीखी हैं, चल बता फिर मुझे तूने मुझसे क्या सीखा है। अब ये बस 8 बातें आप भी अपनी उंगली पे ले लें और ये आखिरी हैं, लेकिन ये वो बातें हैं कि जिसको वाकई पल्ले से बांध लें तो सारी तालीमात का खुलासा है। शागिर्द कहने लगा कि मैंने आपसे जो पहली बात सीखी है वो क्या है कि मखलूक को जब बंदा देखता है, यानी हम लोगों को देखे, तो मैंने देखा है कि हर बंदा किसी से मोहब्बत करता है, और इंसान की ख्वाहिश क्या होती है कि मेरा महबूब मुझे कभी ना छोड़े, ऐसे ही है ना, कब्र तक जाने तक जिनसे मैं प्यार करता हूँ मेरे साथ रहे, और मौत एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदे को उसके प्यारों से जुदा करती है। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं मर जाऊँगा, कब्र में चला जाऊँगा, तो जिनसे भी मैं मोहब्बत करता हूँ वो छोड़ देंगी मुझे। तो मैंने उस दिन से नेकियों को, गुड डीड्स को अपना महबूब बना लिया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान के जो अच्छे अमाल है वो कब्र में उसके साथ रहेंगे। तो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मेरे साथ कब्र में तो कोई जाए, तो मैंने नेकियों को महबूब बनाया कि मेरे मरने पे मुझे वो छोड़ेंगी तो नहीं, तो मैं अब नेकियां बहुत करता हूँ और उस पर कोशिश करता हूँ। दूसरी बात मैंने आपसे ये सीखी है कि लोगों के पास जब कोई कीमती चीज़ होती है ना, तो लोग उसको संभाल के रखते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, ऐसे ही है ना। आर्टिफिशियल चीज़ें, ख़राब चीज़ें हमारी बाहर उल रही होंगी, लेकिन सोना चांदी हमारा लॉकर्स में होने लगता है, ऐसे ही है ना। तो कहते हैं कि मैंने उसके बाद जब अल्लाह का फरमान सुना, सूरह नाहल की आयत 96 में आता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो तो खर्च हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, वमा इंदल्लाही हुवा बाक, वो बाकी रहेगा। तो उसके बाद से जो कीमती चीज़ मेरे पास आती थी, जिससे मुझे मोहब्बत होती थी, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में दे देता था। किस उम्मीद के साथ? मेरे पास रहा तो ज़ाया हो जाएगा, अल्लाह के पास होगा तो सेफ हो गया। जैसे लोग कहते हैं बैंक में डाल दो, लॉकर में रख दो, सिक्योर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरी मनपसंद चीज़ होती है उसको मैं अल्लाह के हाथ में दे देता हूँ, तो इस तरह मेरी चीज़ें आगे महफूज हो रही हैं। तीसरी बात जो मैंने आपसे सीखी है वो ये सीखी है कि आपने सूरत नाजियात की आयत 40 मुझे सिखाई, जिसमें अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है वली मन खाफ मकाम रब्बी ही, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने से खुद को डरा लिया, यानी जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, वह नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोका, फ़इन्नल जन्नत ही अल मावा, तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। तो उस दिन के बाद से मैंने अपने अंदर से बुरी ख्वाहिशात को निकालना शुरू कर दिया। इस पे तो मुझे चंद जुमले बोलने की इजाज़त दे। आज के दौर का सबसे बड़ा तागूत जो उम्मत मुस्लिमा में घुस गया है वो ख्वाहिश नफ्स है। हमें अपनी ख्वाहिशात इतनी प्यारी हैं, हम उसकी वजह से नेकियों के मौके ज़ाया कर देते, अल्लाह की नाराज़गी मोल ले लेते, खुशियों को नाफरमानियों में बदल लेते, क्या सोच के कि बस ये तो हमारी ख्वाहिश है। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। जिस तेज़ी से आज उम्मत मुस्लिमा ख्वाहिश परस्त हो गई, शायद इतनी तो अल्लाह परस्त भी ना थी। परस्त क्या होता है? परस्तिश करना, वर्शिपर। आज ख्वाहिशों को पूजने वाले लोग बन गए, बच्चे से लेकर बड़े तक। क्या आज अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने और करवाने का कल्चर नहीं बनता जा रहा? आप जब बहुत छोटी थी, आपको अपनी याददाश्त की पीछे जाकर झांक लीजिए, क्या आपकी माएँ आपसे पूछ के कपड़े आपको पहनाती थी, आपको पूछ के खिलाती थी, सीरियल आपकी पसंद का आता था, सीरियल किसने देना था? वो माँ रात की रोटी पे अगर आपको मक्खन लगा दे आपने खाना है, शहद लगा दे खाना है, आपने अगर शक्कर लगानी है खा दे, कोई बोलता था? क्या आपकी मर्जियाँ चलती थी? यकीन करें, इतना बच्चा, माँ के कह लें कि घुटनों से ऊंचा जरा कर, इतना सा बच्चा होता है और माँ उससे पूछ रही होती है बेटा क्या लोगे, क्या खाओगे, और वो फिर बच्चे आपको नचाएंगे, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, फिर वो नखरे करेंगे। देखिए जिसको कोई इज्जत दे जुदे, और वो हो भी छोटा बंदा ज़रा नीच, तो वो तो मनवाएगा अपनी बातें। आज शुरू से बच्चों को, और स्पेशली आज जिस माहौल में मैं और आप दुनिया में जी रहे हैं, आज बच्चों को कुछ ना कहो, इनकी मर्जियां मानो। इतना सब बच्चा, उसकी बात अहम है, बड़ी माँ की बात गलत है। ये आपके इर्द गिर्द भी हो रहा है। जो माएँ वो जानती हैं, स्कूलों में, बारनेहातनों में इजाज़त नहीं है आपके बच्चे को कुछ कहने की। अमेरिका में एक बड़ी मशहूर है कहावत, यानी बीवी जो कहती है वही ठीक है, ऐसी जोक है, यानी वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। आपके शौहर भी कहेंगे यस यस, आप हमेशा ठीक होती हैं। ये एक बेबसी की अलामत ही है ना बेचारे, और क्या करें हैं। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि चाइल्ड इज़ ऑलवेज राइट। बच्चा इतनी सी बात कह दे ना माँ ने मारा, तो आप फिर बच्चे की शक्ल देखने को तरसें। इतना ज़्यादा शुरू से बच्चे को अपने नफ्स की पूजा का हुक्म दिया जा रहा है इनडायरेक्टली, कि वो बड़े होके कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते। आज एक छोटी सी किसी ने वीडियो भेजी, क्लिप मैंने सुना नहीं, लेकिन जो उसका शुरू से मुझे अंदाज़ा हुआ, कोई एक ब्रदर थे और वो किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ से वीडियोस रिलीज़ होती हैं, और बाहर के मुल्क की वो वीडियो थी। तो वो बता रहे थे कि जो वीडियोस बनती हैं और जो बच्चों को दिखाने के लिए कार्टून्स बनते हैं, उसमें प्लान्स क्या हैं अगले 10 साल, उससे अगले 10 साल में, और यही सारी कुछ बच्चों में चीज़ें इंडल्ज की जा रही हैं कि तुम ठीक होते हो, तुम्हारे माँ बाप सही नहीं होते, और दिस एंड दैट। तो वो शुरू से बच्चों को इतना सेल्फ कॉन्शियस बना देते हैं कि आप देख लीजिए आज यही हो रहा है। क्या आज आपके मेरे इर्द गिर्द हर बंदा अपनी मर्जी नहीं मनवाता? चलिए वो तो बच्चे थे, बड़े हो ही जाएंगे, बड़े होके क्या होता है? सच बताइए, क्या आपको अपने बच्चों पे यकीन है कि आज रात शादी में जाना है तो वो सारे आपके साथ चल पड़ेंगे? हमें तो नहीं थी जरूरत के रुकने की। घर रोते जाएं धोते जाएं, सब जा रहे हैं तो आपने भी जाना है, घर में अकेले नहीं रहना। आज आप देखिए, इल्ला माशाल्लाह, कुछ माँ बाप ने बच्चों को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंट्रोल में रखा है। 90% मैंने देखा है सिर्फ शौहर बीवी जाते हैं, दावतों में भी, बन शादियों में भी, वो उसकी ये मजबूरी वो, और माँ बाप भी बड़े खुश हैं क्योंकि बच्चे पढ़ने लग गए ना, वो उसका ये थीसिस था, उसके इम्तिहान था, और असल में अंदर पता क्या है कि उनको पसंद नहीं आपके साथ जाना, उनके दोस्त उनके हाथ में, घरों में वो खुद कर लेंगे अपनी दोस्तियाँ। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन ये एक ट्रेंड बन गया है, जहनी तौर पे बच्चे माँ बाप से अब कटते जा रहे हैं। सच है कि झूठ है? आप यंग बच्चियाँ बैठी हैं, दिल नहीं करता मामा के साथ जाने को, मामा की दोस्तें बोरिंग, वहाँ बैठना पड़ेगा, वहाँ क्या करेंगे। अच्छा, बच्चियाँ बोलती नहीं हैं माँ बाप की दोस्तों के आगे, मुझे नहीं पता इनका क्या हाल है, ये बाद में वैसे बात कर ले। एक आम मुशाहिदा देखा है, देखिए आप अपने ऊपर लीजिए, जब आप 10, 12, 15 साल की थी, आपकी अम्मी घर में नहीं थी, और कोई आ जाती थी गली से, खाला, चची, फूफी, मामी, कोई दोस्त, इतनी सी बच्चियां पूरी एंटरटेनमेंट नहीं देती थी। माँ साथ बैठी और वो हाथ से यूं करती थी, तो वो इसके अंदर 2 कप चाय, 7 बिस्कुट ले आना, है ये हाथ के इशारे थे। और आज बाहर से मॉम इज़ नॉट होम, फ़ोन पे ठहरे, मॉम नॉट होम, खुदा हाफिज़। यानी एक कल्चर की बात कर रही हूँ। यहाँ नॉर्वे में अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर है, इस पर थोड़ा सा पीछे से, चूँकि बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है पाकिस्तान से, कुछ आई थिंक सो कि जो मैंने फील किया, मैं वो बता रही हूँ कि यहाँ फिर भी हालात बेहतर है। आप जितना ऊपर ऊपर जाते जाएं, वो पेरेंट जो 5-5 साल पाकिस्तान ही नहीं गए, बच्चों को लेकर भी नहीं जाते, ठीक है यहाँ से जाना शायद निस्बतन सस्ता और आसान होगा। आप थोड़ा ऊपर जाइए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितना फासला बढ़ता है, ज़ाहिर महंगा भी है, कई कई साल तक बच्चे माँ बाप के साथ पाकिस्तान नहीं जाते, या वहाँ वालों के तो आने का सवाल भी बहुत कम होता है, सिर्फ मिसाल दे रही हूँ। तो बच्चे इतने ज़्यादा दूर हो जाते हैं अपने खून के रिश्तों से, इवन 2 रिश्ते बताए, अमेरिका में कहते हैं रिश्ते सिर्फ 2 ही होते हैं, अंकल एंड आंट। अंकल वो जिसको देखा बाप की उम्र के बराबर है, ये अंकल है, और जो माँ की उम्र के बराबर है वो आंटी हैं, और जो अपनी एज के बराबर है वो सारे कजन्स हैं। तो कहने का मतलब ये कि अपने बच्चों को थोड़ा सा साथ रखने की ज़रूरत है। आपके बच्चे हैं, फिर आज आपकी छोटी नहीं मानेंगे तो कल बड़ी कहाँ मानेंगे? और इसके लिए कभी माने कभी मनवाएं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको एक सिखा रही हूँ इस बात में कि नफ्स को कंट्रोल करना भी माँ बाप ने सिखाना है। बच्चा कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या उसकी चीज़ें, ये आपने मैंने ही सिखानी होती है। फिर चौथी चीज़ कहते हैं कि जब मैंने लोगों को देखा कि हर एक का रुझान दुनियावी माल की तरफ है, हसब नसब, दुनियावी जाहो मनसब में देखता है, तो मैंने ये बात देखी कि सबको अपने बड़ा होने पे इज्जत है, यानी खानदान की बात है। लेकिन मैंने सूरह हुजरात की आयत आपसे सीख ली, क्या कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह यतकाकुम, कि बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जिसके अंदर तकवा ज़्यादा है। तो मैंने उसके बाद तकवा को अपनाने की कोशिशें कर दी। यानी मुझे ये लगा कि इज़्ज़त में, घर में, माल में, दौलत में इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त अल्लाह के डरने में है। जो अल्लाह से डरेगा उसकी इज़्ज़त है। तो मैंने अल्लाह से डरना शुरू कर दिया। और पांचवी बात है कि लोगों में मैंने ये देखा कि बदगुमान बहुत रहते हैं, एक दूसरे के बारे में हमेशा बैड थाट्स फिर रखते हैं, और कभी उसको बुरा कहते हैं, उसको भला कहते हैं, ये है वो है। यानी मिसाल है कि बात बहुत ही तकलीफ़ की है, लेकिन आप देखिए कि अमूमन हम गरीब और मासियाँ और जो हमारे घरों के काम करने वाले हैं उनको कैसे बुलाते हैं। यहाँ तो हर वो बात ही कोई नहीं है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन आज सुबह कोई बात हुई तो मेरे हस्बैंड, जो हर साल पाकिस्तान हम लोग आलमोस्ट जाते हैं, तो ये खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को ना, ज़ाहिर घरों में रहते हैं जब, तो मुझे कहते हैं कि ये बताएं कि पाकिस्तान में लोग जो मेड्स ही होती हैं उनको इतना बुरा क्यों समझते हैं। तो ये करके बुलाना आ गई, पहले तो डांटना आते ही, कल क्यों नहीं आई, और फिर अगर 2 दिन ना आए तो काम करना पड़ जाए, फिर देखिए क्या हाल है। यानी गरीब की इज्जत नहीं है। वो लोग जो आपका घर साफ़ करते हैं, आप पहले आते उनकी खूब बेइज्जती करते हैं, फिर कहते हैं पकड़ो झाड़ू, और अगर वो उठ के वहाँ से आपकी बातें ना बर्दाश्त करे और उठ के चली जाए तो कहते हैं बड़ी बेगम साहब है, बड़ा नखरा है इसका, 4 पैसे आपने 2,000 रुपया एडवांस दिया हो उसको आज, और कल वो ना आए आपने कहना भाग गई। ये होते ही झूठे हैं, ये बदअसल हैं, ये फलां लोग हैं। यानी आप इमेजिन कीजिए कि ये चीज़ किसी की गुर्बत या किसी का दुनियावी एतबार से छोटा होना। कहते हैं जब मैंने ये बात लोगों में देखी तो मुझे सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत 32 याद आ गई कि हमने दुनिया में तुम लोगों को ऊंचा या नीचा इसलिए किया कि तुम्हारे काम चलते रहे। ऐसे ही है ना, आप देखिए ना, अगर गरीब ना होते तो हमारी सड़कें कौन साफ़ करता, हमारे गटर कौन साफ़ करता। पैसे नहीं है तभी सुनते हैं ना इतनी बातें, हम जैसे पैसे वाले होते ये तो ये कहते रखो खुद अपने पास। तो अल्लाह ने तो ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए सब कुछ किया है। तो कहते हैं कि मैंने फिर उस वक़्त क्या किया कि मैंने लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि इन 8 बातों में भी सिर्फ 5 हुई हैं और इस पू में पूरा दीन आ गया। आज हमारे दीन में यही कमी है। कहने लगे मैंने हसद छोड़ दिया, मैं नहीं किसी से हसद करता, और मखलूक से बिल्कुल बेनियाज हो गया कि मेरी किस्मत का हर फैसला मेरे रब के हाथ में, तो मैं दूसरों के ऊपर नजरें क्यों डालूं। और फिर इसी तरह से कहते हैं मैंने दुनिया में देखा कि लोग खून बहाते हैं, सरकशियाँ करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, तो मैंने अल्लाह ताला से इसका जवाब मांगा कि कुरान में इसके बारे में क्या बात है। तो अल्लाह ने सूरह फातिर आयत 6 में कहा कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे अपना दुश्मन समझो। तो मुझे समझ आ गया कि शैतान के वार से बचना है ताकि मेरा दूसरों के साथ मामला दुरुस्त हो जाए। तो मैंने अपने आप को शैतान की कोशिशों से उसके वार से बचाना शुरू कर दिया, जैसे औसुबिल्ला पढ़ना और बाकी सारी चीज़ें। और फिर कहते हैं कि मैंने बाज़ दफ़ा देखा कि लोग थोड़ी सी रोटी के टुकड़े के लिए अपने नफ्स को जलील कर लेते हैं, यानी गलत तरीक़ों से कमाने लग जाते हैं। लेकिन मैंने कुरान में सूरह हूद की आयत 6 पढ़ी कि ज़मीन पे चलने वाला यानी हर मखलूक का रिस्क मैंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ। तो कहते हैं उस दिन के बाद मैंने रिस्क की फ़िक्र ही छोड़ दी। आज आप देखिए बहुत सारों को क्या इस रिस्क ने नहीं परेशान किया हुआ। नमाज़ें क्यों कज़ा होती हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं पढ़ते। जितने लोग मेरे से ये सवाल आके पूछते हैं, शायद ही कम पूछते होंगे कि सारी नमाज़ें इकट्ठी शाम को आके पढ़ लिया करें, और स्पेशली फिर सर्दियों में, जबकि आपको पता है कि अगर जो लोग जॉब पे जाते हैं या स्कूलों में होते हैं तो जोहर असर मगरिब तीनों चली जाती हैं। कहते हैं हम रात को आके चारों इकट्ठी पढ़ लें, वजह क्या जी, हम कमा रहे थे या हम पढ़ रहे थे, खा रहे थे वो थे। तो उसका जवाब वही है कि आप सारे दिन किसी से पानी मांगे 2-4 बार और वो ना दे, और रात को आपको 4-5 गिलास पानी के भर के ला दे कि ये सुबह वाला, ये दोपहर वाला, ये शाम वाला, तो वो खुश होगा आपसे। आप चाहे पानी की जगह दूध दे दें, जूस डाल दें, बेहतरीन गिलास दें। नमाज का तो मकसद ही ये था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला की बात को महसूस करो। तो जब हम रिस्क के नाम पर ये चीज़ पीछे करते हैं तो मुझे बताया कि ज़िंदगी की बरकत कहाँ से आएगी। और ये बात अभी से नोट कर लें हम सब, रमज़ान तो आएगा सो आएगा, वो तो साल में एक महीना, वो तो एक इम्तिहान है ना। चलिए आप कह लें 30 सवालों का या 30 दिनों का टेस्ट है, तो नमाज तो दिन में 5 बार का टेस्ट है। हर नमाज इम्तिहान का पर्चा। फजर क्यों, नमाज पे आ रही है कि नींद, अस्सलातु खैरु मिनन नौम। सुबह उठते ही पता लग जाता है कि अल्लाह से प्यार है कि किसको। वो कहते हैं ना कि किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, यानी सुबह उठना कितना मुश्किल लगता है। फजर पे मुश्किल है, जॉब पे 8 बजे उठ जाएंगे, रात आधी हो, 3 बजे की फ्लाइट हो, मेहमान आ रहे हैं वो जिनके साथ दिल अटका हुआ है, पता है वो 5 बजे से पहले बाहर नहीं आएंगे। एयरपोर्ट पे जाके क्याम की हालत में कौन खड़ा हो जाता है, रुकू में नींद के झोंकों से जाएं लेकिन शौक लेकर जाता है। तो असल बात यह है कि जब एक इंसान दिन में 5 नमाजों को डिले करे, इसको भी आदत को पहले से ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो नमाज नमाज ही नहीं है जो आपकी मेरी अपनी मर्जी पे पढ़ी जाए, ये तो एक अलग इशू है, लेकिन बहरहाल इस पे गौर करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह से आप देखिए, कहते हैं कि मैंने दुनिया में लोगों को देखा, वो किसी ना किसी बड़ी कमज़ोर चीज़ पे भरोसा करता है। बस आपका भरोसा अपनी गाड़ी पे, गाड़ी है निकल जाएंगे, सेलफोन हाथ में जहाँ फंसे फ़ोन कर लेंगे, किसी का अपनी फैक्ट्री पे या किसी का तिजारत पे, कोई अपने घर पे मान करता है जी घर तो अपना है, किसी को अपनी एजुकेशन पे, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं देखिए कितना अच्छा स्टैंडर्ड है मेरी, मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। कहते मैंने सूरत अल्लाह की आयत 3 पढ़ी कि वो जो अल्लाह पे भरोसा करे, व मैं या तवक्कल अल्लाह ही फहु व हस्बुह, कि जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसको काफ़ी होगा। कहते हैं उसके बाद मैंने अल्लाह के माँ सिवा पर भरोसा करना छोड़ दिया। बस ये बातें सुनने की देर थी कि उस्ताद बोले कि मेरे प्यारे शागिर्द, तुमने कुरान के उलूम की असल जड़ मुझसे ले ली। यानी उस्ताद का गुस्सा ख़त्म हो गया कि तुमने बातें तो 8 कही हैं, लेकिन अगर ये 8 बातें तुमने पल्ले से बांधी हुई हैं तो तुमने पूरे कुरान पे अमल कर लिया। बात सारी यही है। आप देखिए कि ये वो बातें हैं जिसको सुनना आसान है, करना मुश्किल है। तो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाने की ज़रूरत है कि हम 24 घंटे के मुस्लिम हों। और ख़ास तौर पे आप देखिएगा कि अब जो रमज़ान आएगा, अगर आप मैं उसके लिए पहले से तैयार है, ये सारी बातें, ये लेक्चर भी आपको मिल सकता है वापस, आप चाहेंगे अपने नंबर्स दे दें, आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। लेकिन ये कि नियत कीजिए कि हमने इस साल रमज़ान से बेहतरीन चीज़ लेनी है। हमारे पास वही लोग साथी होते हैं जो खुद सीखते हैं, वही साथ हेल्प करते हैं। आज के स्टूडेंट कल के टीचर बन जाते हैं, क्योंकि हम सब का फ़र्ज़ ही है कि हम इस काम को आगे लेकर चलें और अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद फरमाए। जज़ाक अल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना, या अल्लाह हमारे शोहरों को हमारी आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह हम उनको दीन में भाग भाग कर नेकियां करता हुआ देखें। या अल्लाह बच्चों को माँ बाप की आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह हमारे वो रिश्तेदार जो किसी भी मुश्किल में, उनको उस मुश्किलात से निकाल दे। या अल्लाह जो भी साथी अपने दिलों में जो भी ख्वाहिश और तमन्ना लिए बैठे हैं, या अल्लाह उनकी वो तमन्नाएँ पूरी फरमा। या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें और ये हमारे लिए बख्शिश का और तेरी रहमत को समेटने वाला रमज़ान बन जाए। जो भी जिस परेशानी में, बीमारी में, दुख में, उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत से, उस तकलीफ़ से निजात दे, हमारी ज़िंदगियों को ज़ाया होने से बचा ले, हमें अपना तकवा दे, हमें बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला अपनी तरफ आने वाला बना दे। और जिसने जहाँ कभी दुआओं के लिए कहा, उनको भी हमारी दुआओं में अल्लाह ताला शामिल फरमाए, इस घर पे अपनी रहमतें फरमाए, इनका अब इस घर में ये सब करना, इख्तमाम, कोशिश कबूल फरमाए, इनके बच्चों को इनकी आंखों की ठंडक बनाए, इनके शोहर को भी इनके साथ दीन दुनिया के मुआविन बना दे। अल्लाह हमारे उस्तादों पे अपना रहम फरमा। या अल्लाह जो साथी घरों से बैठ के सुनते हैं, या उनको भी अब हमारी सारी दुआओं में शामिल फरमा। और या अल्लाह इतने मौके जो नेकियों के हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें उससे फ़ायदा उठाने वाला बना दे। कभी वेशी से दरगुजर फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा जहाँ भी है या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह हमें वो सारे काम छोड़ने वाला बना जिसकी वजह से आज हम पे ये मुश्किलात आती हैं, और जो इस रास्ते में, इस दावत को फैलाने में हमारे मददगार हैं, या अल्लाह तो अपनी जनाब से, अपनी रहमत से उनके काम कर दे। या अल्लाह तो उनको काफ़ी हो जा, उनके बच्चों के मामले अपने हाथ में ले ले। या अल्लाह उनके माली दुनियावी हर मामले को अपने हाथ में लेकर उनको सुरखरू कर दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन।